ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज इस मंच पर उपस्थित है हमारे आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी अनीता दीदी। अनीता दीदी जो है पिछले 25 वर्षों से इस आध्यात्मिक जगत के साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में पिछले 25 वर्षों से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आदरणीय अनीता दीदी जो है बहुत ही प्रभावशाली राजयोगा फैकल्टी है। उन्होंने साइकोलॉजी में मास्टर्स किया हुआ है और कई सेमिनार्स प्रोग्राम्स वो कराते आए हैं। वर्तमान समय जो है हैदराबाद स्थित सेंटर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनके साथ का वैयक्तिक परिचय देना चाहूं तो अनीता दीदी जो है बहुत ही सरल इनका स्वभाव है और सेवा के लिए हमेशा देखा है वो अथक और एवर रेडी रहते हैं। जैसे आपको पता होगा आपके स्केड्यूल में आज किसी और दीदी का सत्र था, बट अचानक का रोल इनको मिला और उन्होंने हांजी करके हमारे सम्मुख उपस्थित रहे। तो दीदी ऐसे ही बहुत एवर रेडी सदा ही रहते हैं और हमारे मन में कई बार संकल्प आता है कि मेरे साथ ऐसे क्यों। आपके मन में भी कई बार कई लोगों के साथ ये प्रश्न मन के अंदर आया होगा और अपने अनुभव किया होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर जो है आपको आज के सत्र में अवश्य ही मिलेगा, क्योंकि आज का सत्र है कर्म फिलॉसफी। हम कर्म के बारे में जानेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है और इस प्रकार न हो उसके लिए मुझे मेरे जीवन में किस प्रकार के कर्म करने हैं और कर्म के साथ ऐसी कौन सी विधियां हैं जिसको मैं अपनाऊं तो मेरे जीवन का ये प्रश्न समाप्त हो जाएगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। बल्कि हर हाल में हम खुश रहना पसंद करेंगे, रहेंगे, क्योंकि हम जान जाएंगे मेरे साथ ऐसा क्यों। तो इस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे समूह को उपस्थित है आदरणीय अनीता दीदी। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू प्रतिभा बहन, बहुत ही सुंदर रीति से परिचय दिया। तो जो चीज है उसको बहुत ब्यूटीफुली है, तो चीज है एक माइक है एक लैपटॉप, लेकिन इसका इतना सुंदर वर्णन करना तो बहुत ही सुंदर लगता है। थैंक यू सो मच। तो आज जैसे प्रतिभा बहन ने कहा कि हम कर्मों के बारे में बात करते हैं, तो पहले हम समझें कि कर्म जो इंसान का नेचुरल जीने का एक ये है, आधार है ना, आधार भी नहीं कहेंगे, कि कर्म के बिना इंसान नहीं है, इंसान को कर्म करना ही पड़ेगा। जब से जन्म लिया मृत्यु तक आत्मा जब शरीर से जुड़ती है तो कर्म में उसको आना ही है। हम कहेंगे हम कर्म में नहीं आएंगे, हम कर्म संन्यास कर लेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, बैठे रहना भी कर्म है। क्रिया कहते हैं ना, वर्ब है, डूइंग, कुछ भी कर रहे हैं तो वो कर्म ही है। बैठ रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कर्म ही है ना। तो कर्म के बिना तो कोई रह नहीं सकते। मतलब जैसे कहते हैं ना, कर्म संन्यास करके हिमालय में चले गए, वो कर्म क्षेत्र पर नहीं है, वो कर्म संन्यास कर लिए। लेकिन कर्म संन्यास नहीं हो सकता, कर्म क्षेत्र से दूर हट सकते, बाकी कर्म संन्यास नहीं हो सकता। और जैसे हम जैसे लोग हैं वो कर्म संन्यास कर भी नहीं सकते हैं, हम भी नहीं, मैं भी नहीं, क्योंकि हम भले सन्यासी दिख रहे हैं लेकिन आपके परिवार में 4 या 6 लोग होंगे तो हमारे परिवार में 50 या 100 या उससे भी ज्यादा होंगे, क्योंकि हरेक की जो भी हरेक व्यक्ति हमारे से जुड़ते हैं उनसे हमारा संबंध जुड़ता है, हमारे परिवार के हैं और उनके जो कंसर्न्स हैं, दुख सुख जो भी हैं, हमसे कंसर्न होता ही है। तो कर्म छोड़ नहीं सकते हैं, ये पक्का है। कर्म किस आधार से करते हैं, किस भावना से करते हैं, कैसे करते हैं उस पर आधारित होता है हमारा कर्मों का गति, मतलब उसका जो फिलॉसफी है, कर्मा फिलॉसफी जो कहते हैं, वो फिलॉसफी बनता है हमारे भावनाओं के आधार से। मतलब कर्मों को हम कैटेगराइज नहीं कर सकते। जैसे मुझे याद है बचपन में मैं शायद सेकंड ग्रेड में होंगी, एक मॉरल साइंस क्लास हमारा होता था, आपको भी याद होगा, मैं कॉन्वेंट में थोड़े समय के लिए पढ़ी हूँ। तो ये मॉरल साइंस बुक में क्या होता था, एक ब्लैक एंड व्हाइट बुक होता था, उसमें एक पेज का एक मॉरल कुछ लिखा होता था और उसका द मॉरल इज करके एक लाइन का मॉरल रहता था। तो उसमें उस दिन का मॉरल स्टोरी था आइदर काइंडनेस या कोऑपरेशन, दोनों में से कुछ ऐसा था। वो टाइटल मुझे याद नहीं है लेकिन वो पिक्चर मुझे याद है। एक छोटी सी लड़की है और वो एक ब्लाइंड मैन को रोड क्रॉस करने के लिए हेल्प कर रही है। वही लड़की को फिर यहाँ एक चित्र दिखाया, वो एक ग्रैंड मदर के साथ, अपने ग्रैंड मदर के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। तो टीचर ने जो भी बताया कि ऐसे ऐसे हमको हेल्प करना चाहिए, वी हैव टू बी काइंड, सबके लिए देखना चाहिए, सब कुछ बताया, मॉरल जो भी बताया, उसके बाद होमवर्क दिया कि तुमको टू एक्ट्स ऑफ काइंडनेस करने हैं, घर जाके टू एक्ट्स ऑफ काइंडनेस करने हैं। तो मैं तो सिंसियर स्टूडेंट थी, जो टीचर ने कहा मैं करती थी। तो नेक्स्ट डे मैं आई तो मैंने कहा मैंने किया नहीं, तो होमवर्क तो किया नहीं। तो टीचर ने कहा तुमने नहीं किया, तो मैं रोने लगी कि मेरे को मैं कैसे करूं, तो क्या हुआ। तो कहती है, मैं कहती कही उस समय कि वो मुझे कोई ब्लाइंड मैन नहीं मिला और मेरी ग्रैंड मदर नहीं है, तो मैं कैसे करूं। मुझे यही समझ में आया कि ये करना है, ये करना है, लेकिन वो एग्जाम्पल के रूप में है, ये नहीं समझ में आया। मैं क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि आज हमारा यही है, डू गुड बी गुड, माना हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमको अच्छा रहना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। तो आजकल कहते हैं नहीं, नहीं हो सकता है, कैसे हो सकता है, हम अच्छे बन के रहेंगे तो लोग हमारे सर पर बैठेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। बिजनेस में थोड़ा बहुत झूठ तो चलता ही है, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है बिजनेस में, व्यापार में हम झूठ ना बोलें। ऐसे कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे बेसिक फिलॉसफी के आधार से हम जो निर्णय करते हैं तो फिर लगता है कि डिफिकल्ट है। सच के मार्ग पे चलना, कर्मों को अच्छे करना, ये डिफिकल्ट है ऐसा लगता है। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब हम कर्मों की गति को समझते हैं तो ये समझ में आता है कोई भी कर्म को हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, ये अच्छे कर्म, ये बुरे कर्म। जैसे मैं, मुझे ये अवसर मिला है, मैं यहाँ बैठकर ज्ञान सुना रही हूँ, ये अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है, क्या कहेंगे? अच्छा कर्म है। लेकिन यही कर्म मैं अगर सोच रही हूँ कि देखो लास्ट मिनट में मेरे ऊपर डंप किया, मेरे को करना पड़ रहा है, करना ही पड़ेगा ना, यहाँ बैठ के अभी करना ही पड़ेगा, ये अगर मैं सोच रही हूँ तो ये अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है? यही कर्म, श्रेष्ठते श्रेष्ठ कर्म, बुरा कर्म बन जाएगा। तो जो कर्म हम कर रहे हैं, अच्छा चलो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना पड़ता है कभी कभी, मैं भी बहुत झूठ बोली हूँ। क्योंकि क्या है, मुझे याद आता है हमारी एक सीनियर सिस्टर थी, वो उनको कैंसर काफी कुछ बढ़ के ब्रेन में चला गया था। तो उस समय हमारे पास हैदराबाद में आई चेकअप के लिए आए थे, क्योंकि हैदराबाद में एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट बहुत फेमस है, तो आई चेकअप के लिए आए थे। तो वो आई डॉक्टर ने कहा, ही वॉज शॉक्ड कि पूरे ब्रेन में फैल गया, आप इनको ले जाइए और ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाइए। तो जब मैं लेकर गई तो डॉक्टर ने ऑब्वियसली पेशेंट को नहीं बताया कि मुझे बताया उनका सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है। उनके दो ऑप्शंस थे, एक है कीमो लेना तो उनका 1.5 ईयर लाइफ एक्सटेंड होगा और कंफर्टेबली रहेंगे, और कीमो नहीं दिए तो ब्रेन में फैला हुआ है तो कुछ भी हो सकता है, पैरालिटिक अटैक भी हो सकता है, ब्रेन का जिस पार्ट में वो चला गया तो पूरा शरीर वेजिटेटिव स्टेट में भी आ सकता है, तो रिस्की है, उनका लाइफ लास्ट में भी 6 मंथ्स ऐसा बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, तो आप क्या चुनेंगे? बड़ों से राय किया, सब किया और कहा कीमो के लिए गो हेड करना है। अब कीमो के लिए गो हेड करना है मतलब पेशेंट भी कन्विंस्ड होना चाहिए ना। तो पेशेंट, वो बहन ने कहा कि हमारी सिचुएशन क्या है, तो हमने तो यही कहा आपका सिचुएशन अच्छा है। तो डॉक्टर के पास, उनका कीमो एवरी थर्सडे होता था, तो एवरी ट्यूसडे ब्लड सैंपल लेना, वेंसडे रिपोर्ट लेना, डॉक्टर को दिखाना, थर्सडे कीमो करना, ये 3 दिन का सिलसिला हर हफ्ता चलता था। ऐसा चला, मैंने बताया ना, 1.5 साल चला। तो 1.5 साल तक कितने कीमोज हुए, कितने बार रिपोर्ट हुए, हर बार मेरा एक ही आंसर होता था, रिपोर्ट कैसा है? बहुत अच्छा है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? इम्प्रूव हो रहा है। क्या हो रहा है? अच्छा हो रहा है। मेरा रिपोर्ट कहाँ है? डॉक्टर के पास है, मेरे पास ही है, लेकिन नहीं बता सकती हूँ ना, दिखा नहीं सकती हूँ। डॉक्टर के पास है, क्या चल रहा है? अच्छा चल रहा है। करते 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 1.5 साल बिता दिया, आत्मा बहुत सुकून से चली गई। डर डर के क्यों जाना, चिंता करते हुए क्यों जाना? शायद चिंता भी नहीं करती थी, लेकिन किसी को भी इफेक्ट होता ना। अच्छे से खुशी से, मुझे याद है आपको जसवाल भाभी बैठे हैं, लास्ट में इतने सारे उन्होंने कल्चरल एक्टिविटीज कराया, स्किट्स कराया, लक्ष्मी नारायण का डेकोरेशन, वो मतलब दरबार बनाया और ऐसे डेकोरेशन किया, इतना सारा उमंग उत्साह, अच्छा जीवन जिया। तो मेरे झूठ से अगर उनका जीवन अच्छा हुआ तो मेरा पुण्य में जमा हुआ या पाप में जमा हुआ? तो अच्छा, आप कहेंगे ये सब ठीक है, किसी का मतलब क्या करते, किल समन, किसी का खून करना, किसी को किल करना, मार डालना, इसको अच्छे कर्म में गिनती करेंगे या बुरे कर्म में? ये आप बताइए। नहीं, अभी आप जान चुके हैं कि कर्म को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो आप थोड़ा सोचिए, किसी को हमने मार दिया, शूट किया या जो भी है मार दिया, हमने मना, हम नहीं, हम तो मारने वाले में से नहीं है, लेकिन किसी ने, एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को मार दिया, तो अच्छा कर्म, सोच के बताइए, कर्म को हम डिवाइड नहीं कर सकते है, तो अच्छा कर्म में जाता है या बुरा कर्म में जाता है? क्वेश्चन भी मैं ही पूछ रही हूँ, आंसर भी मैं ही दे रही हूँ। इट डिपेंड्स ऑन क्या सिचुएशन, मैंने चोर ने मुझे अटैक किया, मैंने मारा इसलिए, वो मर गया इसलिए, ऐसे सेल्फ डिफेंस में भी मारूं तो भी कर्म का खाता बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता है। हम इस सिचुएशन में इसलिए आए, आगे हम सुनेंगे कर्मों का, हम एक सिचुएशन में इसलिए आए क्योंकि हमारा कर्मों का खाता उस अनुसार है। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं और किसी ने मतलब हाईवे में चला रहे हैं और किसी ने भाग के, ही केम फ्रॉम दिस एंड टू दैट एंड, एंड वी डिडंट नो दैट ही इज गोइंग टू रन, हमको पता नहीं था, लेकिन वो मर गया। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ, क्योंकि बहुत खराब लगता है उसके बाद, वो मर गया तो बुरा लगता है कि नहीं है? 100% लगता है, हमारी गलती नहीं थी, हम तो अपने स्पीड से, जो गवर्नमेंट के रेगुलेशन रूल्स है उस अनुसार हम चल रहे हैं, लेकिन बुरा लगता है, मना कर्मों का खाता है ऑफ कोर्स। हमारे हाथों से ये हुआ, हम उस सिचुएशन में आए, उसका भी कर्म का हिसाब किताब है, ऐसा नहीं कि नहीं है? तो ये बताइए सिचुएशन क्या है, कौन से सिचुएशन में इस कर्म को हम कहेंगे नहीं ये बुरा कर्म नहीं है या ये अच्छा कर्म है? अच्छे में भी गिनती किया जा सकता है। जैसे एक मिलिट्री पर्सन पाकिस्तान के बॉर्डर में है, पाकिस्तान का व्यक्ति अंदर या आर्मी अंदर घुस रहे हैं बॉर्डर से, और अगर हम यहाँ लूज हो जाएंगे तो 132-142 करोड़ आत्माएं जिनको थ्रेट हो सकता है, खतरा हो सकता है, उनको रोकने के लिए हमने मारा, तो ये अच्छा कर्म है बुरा कर्म है? क्या कहते हैं दुनिया में, आप युद्ध के मैदान में अगर शरीर छोड़ो तो वीरत्व पाएंगे, तो आपने आपके मतलब आपके जो रोल है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आपने निभाया, तो वो कर्म क्या हो गया? अच्छा कर्म हो गया। आप भी मर जाए तो भी अच्छा कर्म हो जाए, मारी मरी डजंट मैटर, आपने अपना कर्म धर्म निभाया, वो कर्म अच्छा कर्म हो गया। तो मारने तक का कर्म अगर बुरा नहीं हो सकता, तो हमारे छोटे छोटे कर्म बुरे कैसे हो सकते हैं? तो मतलब कर्म डिवाइड होता है। अभी यही व्यक्ति, ये मिलिट्री का जो पर्सन है, वो मार रहा है और ये सोच के मार रहा है, यू पाकिस्तानी यू डिजर्व टू डाई, चलो मैं तुमको मारता हूं। तो ये कर्म किस में आता है? बुरे कर्म में आता है। अगर वो सोचे कि अच्छा मुझे ये प्रोटेक्ट करना है, अपने देश को, अपने देशवासियों को प्रोटेक्ट करना है, मेरा धर्म निभाना है, इसको मारना पड़ रहा है, अगर मारे बिगर काम हो सकता है तो मैं वो भी कर लूं, लेकिन इसको मारना पड़ रहा है इसलिए मैं मार रहा हूं, ये सोच के करे तो अच्छा कर्म हो जाता है। तो कर्मों को डिवाइड करने के लिए हम दो निशानियां हैं। एक है हम कर्म को कौन सी भावना से कर रहे हैं, कौन सी भावना से कर रहे हैं, माना व्हाट इज अवर इंटेंशन बिहाइंड द एक्शन। हम कर्म कर रहे हैं, मैं यहां बैठी हूं, मेरी इंटेंशन क्या है कि ये सब जो ज्ञान अंदर बैठा हुआ है वो इमर्ज हो। काफी कुछ 99% ज्ञान ऑलरेडी है, उसको सिर्फ एक रूपरेखा देना बस हमारा काम रहता है। तो इस इंटेंशन से मैं करूं, चलो बाबा के बच्चे बाबा के घर में आए हैं, उनको भी अच्छा मिल जाए, इस इंटेंशन से मैं बैठूं, तो ये कर्म अच्छा कर्म हो जाता है। इंटेंशन मेरा क्या है? जैसे होता है ना, कोई कोई अभी लिफ्ट में मिल जाते हैं ऑफिस में, ऐसे आर्टिफिशियल स्माइल के गुड मॉर्निंग ऐसे कहते हैं, तो आपको भी समझ में आ जाता है इनका इंटेंशन कुछ अच्छा नहीं है, कोई और इंटेंशन से मुझे विश कर रहे हैं। तो इंटेंशन भावना एक चीज है, और दूसरा है आउटकम। इस कर्म का आउटकम क्या होगा, त्रिकालदर्शी होकर हमको वो भी देखना पड़ेगा। क्योंकि हम कहेंगे नहीं हमको नहीं पता था हम ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हमको नहीं पता था इसलिए हमने कर लिया, नहीं, उसका भी कर्म का हिसाब किताब बनता है। एक एग्जांपल बताती हूँ, आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा ये, आपके घर के गेट के पास एक लेडी आती है और डिसेंट लुकिंग, नॉट वेरी रिच बट ओके लुकिंग, बहुत गरीब नहीं लग रही है, तो वो आके कहती है कि देखिए हमारी हालत बहुत खराब है, मेरे हस्बैंड यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर ने गिव अप कर लिया, अभी मुझे वापस उनको गांव ले जाना है, लेकिन जाने के लिए पैसे नहीं है, पूरा खर्च हो गया, जाने के लिए पैसे नहीं है, आप बस 300 रुपये दे देंगे तो हम चले जाएंगे, आप थोड़ा मदद कर लीजिए, आप नेक इंसान है, आप हमारी डिफिकल्टी समझ सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? दे देंगे। ये बहुत अच्छी बात आपने कही, पैसे देंगे तो पक्का, मैं 2000% गारंटी देती हूं, पैसे लेकर गलत काम में यूज करेंगे 100%। मुझे कैसे मालूम? मालूम होना चाहिए, बुद्धि यूज करना चाहिए। आप समझे कहीं पे अटके हुए हैं, कोई लखनऊ में कहीं पे अटके हुए हैं और आपके पास पैसे नहीं है, आपके वॉलेट चोरी हो गई, आपके पास मोबाइल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप ऐसे लॉस्ट हैं और शाम का टाइम है, अभी डर भी लग रहा है कि अभी क्या होगा, किसको कैसे जाएं, क्या करें, तब क्या करेंगे? कहीं पे किसी को जाके एक कॉल कर सकता हूँ, इतना ही पूछेंगे, कॉल कर सकता हूँ, आपके नजदीकी जो भी संबंधी है, आपका बेटा है, आपका पिता है, आपका पति है, आपका फ्रेंड है, जिसको भी कॉल, एक कॉल करेंगे, मुझे नहीं पता मुझे इस सिचुएशन से तुम कैसे निकलोगे, मुझे टिकट बुक करके दो, जो भी करना है करो, मुझे यहाँ से निकालो, बोलेंगे कि नहीं, या जाके गेट के पास खड़े होके कहेंगे कि मुझे 300 रुपये दे दो? हम जब नहीं कर सकते हैं तो वो भी नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर रहे हैं मना आदत है करने की। 300 रुपये इज अ लॉट फॉर अ बिगर, इजीली मिल रहा है, इजी मनी, तो इजी मनी से क्या करेंगे, गुटखा पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, गैम्बलिंग करेंगे, यही करेंगे। उनका हार्ड अर्न मनी के साथ फिर भी थोड़ा बहुत घर के खर्चे में हो जाएगा। और आपका बिजनेस का उसूल पता है, आप कोई भी बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उसका वो मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। तो आपने इन्वेस्ट किया एक पाप के खाते में, पाप के कर्म में, तो आप पार्टनर बन गए उसका। तो नेक्स्ट टाइम क्या करना चाहिए? भाई साहब ने बहुत अच्छा कहा, बंदोबस्त करके दो। टिकट चाहिए? अच्छा कहाँ कहाँ चाहिए? मोबाइल में टिकट तो ऐसे ही बुक हो जाता है। अच्छा आपको नहीं आता, किसी को बोलिए इनको टिकट चाहिए। कहाँ के लिए चाहिए? अच्छा सोन सो जगह, टिकट कर दिया। आपको भूख लगी है, आपके पति के लिए भी खाना चाहिए, ढेर सारा खाना दे दो। आपको गिल्ट फील करने की जरूरत ही नहीं है, जो चाहिए दे दो, लेकिन पैसे नहीं दो किसी को भी, किसी को भी, एक्सेप्ट आप उनको मतलब हायर किए हो, आपने उसके साथ समझौता किया है, आप मुझे ये देंगे, आप ये सर्विस देंगे या आप ये चीज देंगे तो मैं इतना पैसा आपको दूंगा, या आपने किया हो तो उसका हिसाब किताब नहीं। बाकी आप कोई भी चीज ऐसे ही पैसे देंगे, मतलब जैसे आपके ड्राइवर को आपने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, उसका कोई हिसाब किताब प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आपका ड्राइवर आपके लिए बहुत एक्स्ट्रा काम कर भी लेता है, उसका काम है ड्राइविंग करना, लेकिन वो थोड़ा बहुत हेल्प कर लेता है, तो आप भी थोड़ा बहुत हेल्प कर लेते, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जानबूझकर आपने पैसों का ये किया, इसलिए आजकल क्या करते हैं लोग, ऑफनेज आदि में डोनेशन करते हैं तो पैसे नहीं देते है, चीज देते हैं। आपको क्या चाहिए आप बोलिए, आपको बेड चाहिए, आपको बेडशीट चाहिए, आपको क्या चाहिए, हम ये लाके देंगे। क्योंकि पता नहीं ना, मिसयूज होगा तो हम फिर भागीदार बन जाते हैं ना। तो ऐसा मैं ये डिस्करेज नहीं कर रही हूँ कि आप पैसे डोनेशन में नहीं दो, लेकिन चेक करके दो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उनका भी अकाउंटिंग सिस्टम होता है ना, आजकल हर जगह अकाउंटिंग सिस्टम होता है, आप देख लो कि कैसा है। तो ऐसे ही रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, किसी को हमने पैसों की बात ऐसे एग्जाम्पल के रूप में सुना रही हूँ, लेकिन ऐसे कई चीजें हैं जिसमें आउटकम का जानकारी रहना बहुत जरूरी है। ना जैसे न्यूक्लियर एनर्जी डिस्कवर करने वाले को ये नहीं पता था कि इस एनर्जी को, उन्होंने तो बहुत अच्छी भावना से किया, लेकिन ये नहीं पता था कि इसका न्यूक्लियर वेपन्स बन सकता है, तो उनकी गलती नहीं है। लेकिन कोई ऐसी चीज वो बना रहा है, जैसे न्यूक्लियर वेपन्स बनाने वाले को, वो तो रिसर्च कर रहा है और बना रहा है, लेकिन इसका क्या उपयोग हो सकता, कैसे इसका यूज होगा। अब न्यूक्लियर वेपन बना, कोई चीज बना, ये माइक बना तो उसका यूज होगा ही ना, तो वेपन बना तो उसका रिजल्ट होगा ही ना। तो कोई ऐसी चीज हम न करें जिससे आउटकम उसका बुरा प्रभाव किसी पर पड़े, कोई भी चीज। जैसे छोटे से छोटी चीज, हम कुछ ऐसे चीज घर में यूज कर रहे हैं जिससे बाजू वाले घर को नुकसान पहुंचेगा, नहीं यूज करें, कुछ और ऑप्शन देखिए। हर चीज में हमको ये दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, तब हमारे कर्म अच्छे हो जाएंगे। तो ये रही पुण्य पाप के। एक तीसरा कर्म का खाता हमारा है, उसको कहते हैं श्रेष्ठ कर्म। आपने कल सृष्टि का चक्र का सुना ना, सृष्टि के चक्र में कैसे संगम युग में परमात्मा के शक्ति के आधार से हम परिवर्तन होते हैं। तो ये संगम युग जो है उसमें हम आत्मा समझकर परमात्मा की याद में जो कर्म करते हैं वो बन जाते हैं श्रेष्ठ कर्म। भगवान के श्री मत के अनुसार जो हम कर्म करते हैं वो होते हैं श्रेष्ठ कर्म। श्री मत, मत इज डायरेक्शन, श्री इज श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मत उनका, इसलिए क्या कहते हैं श्रीमद भगवद गीता कहते हैं कि भगवान के डायरेक्शन अनुसार जो चलते हैं वो हमको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है भगवद गीता को फॉलो करना, क्योंकि उसका बैकग्राउंड कैसे करना, कर्म के आश कैसे नहीं रखना, वो सब किसी ने सिखाया नहीं। इतना ही बताया कि कर्म करो, कर्म की इच्छा, कर्म के फल की इच्छा नहीं रखो, ये बताया, लेकिन क्या उसका मीनिंग क्या किसी ने नहीं बताया, तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। लेकिन जब भगवान की क्या कहते हैं, इंटेंशन समझते हैं, भगवान के व्यक्तित्व को समझते हैं, हमारे प्रति उनका प्यार समझते हैं, तो ये समझ में आता है तो उनको हमारे प्रति अच्छी भावना है और हमको अच्छा मार्ग दिखाना चाहते हैं। तो उनके डायरेक्शन से जब हम चलते हैं तो हमारा कर्म श्रेष्ठ बन जाता है। और श्रेष्ठ कर्मों की ये विशेषता है, श्रेष्ठ कर्मों की विशेषता है कि ये एक कर्म के का मतलब पुण्य कर्म की विशेषता है, आप एक कर्म करो तो उसका एक गुना रिटर्न मिलेगा, आप पाप कर्म करो एक कर्म करो एक गुना रिटर्न मिलेगा। माना आपने 100 के हिसाब से आपने कर्म किया तो आपको 100 मिलेगा, लेकिन श्रेष्ठ कर्म का ये हिसाब है आपने एक किया आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न मिलेगा, एक्सपोनेंशियल के आपको मिलेगा। आपने 100 का किया तो आपको 1 लाख 10 लाख का मिलेगा। तो ये श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ भावना होने के कारण, श्रेष्ठ भावना माना एक्सपैंड हो गया, जैसे परमात्मा के लिए क्या कहते हैं कि सबके बारे में सोचते हैं, हर बच्चे के बारे में भगवान सोचते हैं, ये धर्म ये कास्ट ये ऐसा नहीं है, भगवान के लिए सब बच्चे हैं। तो हमारा भी एक्सपैंड हो जाता है, हमारी भावनाएं श्रेष्ठ हो जाती है और जैसा बीज बोते हैं वैसा हमारा वृक्ष निकलता है। बीज बोए तो वृक्ष निकलना ही है, कोई डाउट नहीं है, आज नहीं तो कल। अब कोई ऐसा बीज बोएंगे जो 3 दिन में भी उगता है, कोई बीज ऐसा है जो 5 साल में उगता है लेकिन फल देता है, जैसे आम का पेड़ आप लगाओ तो तुरंत थोड़ी फल देगा, कोई बीज तुरंत देते हैं कोई बहुत समय के बाद, लेकिन कर्म का बीज हमने बोया तो उसका फल जरूर मिलेगा। तो श्रेष्ठ कर्म हम करते जाएंगे, माने जैसे किसी की ड्यूटी है यहाँ सफाई करने की, यहाँ सब नीट करने की, तो ये ड्यूटी करने वाले अगर सोचेंगे कि देखो मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है, ये भी करना वो भी करना, ये सोचेंगे तो कहाँ कर्म अच्छा होगा। लेकिन ये सोचेंगे कि देखो भगवान के घर में मुझे ये चांस मिला, ये मौका मिला और मैं आत्मा परमात्मा की स्मृति में ये कर रहा हूँ और सब नीट क्लीन हो जाए और जो आए उनको अच्छा अनुभव हो, ऐसे शांति के वाइब्रेशन से मैं करूँ, तो ये कर्म श्रेष्ठ कर्म बन जाता है। ऐसी श्रेष्ठता आ जाती है कि हमको बहुत बैंक बैलेंस, अभी आप व्यापार का तो नियम समझते हैं मुझसे ज्यादा आप समझते हैं कि अच्छा बैलेंस होगा, अच्छा माना री इन्वेस्ट करने के लिए भी आपको चाहिए और बैलेंस बढ़ता जाए ना, तो अच्छा बैलेंस हो तो क्या होगा, उससे मिलता है इंटरेस्ट। बैलेंस अगर बैंक बैलेंस अच्छा हो तो फ्री में मिलता है इंटरेस्ट, तो आपको जो इंटरेस्ट मिला उसके आधार से आप बिना मेहनत के आराम से रह सकते, रहना चाहे तो रह सकते हैं। तो सतयुग त्रेता में हम रहे हैं, दिख रहा है ना, तो सतयुग त्रेता में आप सतयुग और त्रेता टॉप के ये चक्र आपने कल जो सुना उसी को हम सीढ़ी में अब यहाँ देख रहे हैं। तो फर्स्ट युग है सतयुग, सतयुग में हर कर्म, सतयुग और त्रेता दोनों युगों में हर कर्म अकर्म कहा जाता है। अकर्म माना कर्म का कोई नेगेटिव या पॉजिटिव रिजल्ट नहीं, कैसे, क्योंकि प्रकृति का नियम है हम जो कर्म करेंगे जितनी इंटेंसिटी से करेंगे उतना इंटेंसिटी से वापस आएगा, ये प्रकृति का नियम है। तो हमने बॉल ऐसे फेंका तो वो रिटर्न ऐसे ही आएगा, राइट, ये प्रकृति का नियम है। आत्मा जब शरीर समझती अपने आप को तो ये प्रकृति के लॉ में बंध जाती है और कर्म के गति में बंध जाती है। जब आत्मा अपने आप को शरीर नहीं समझती है तो इस लॉ से परे रहती है। तो सतयुग त्रेता में आत्मा शरीर अपने आप को शरीर नहीं समझती है, क्या समझती है, मैं आत्मा हूं, ये मेरा कॉस्ट्यूम है। जब कॉस्ट्यूम का टाइम हो जाता है, कॉस्ट्यूम का टाइम भी पता है कब पूरा होता है, सतयुग में कॉस्ट्यूम का टाइम पूरा होता है 150 इयर्स में। आयु जो है, लाइफ स्पैन जो है सतयुग में 150 इयर्स रहता है। तो जब आत्मा 150 इयर्स तक ये शरीर को यूज करती है, फर्स्ट क्लास शरीर होता है, वहां कोई रोग नहीं, कोई दुख नहीं, कल आपने सुना होगा, कोई चिंता नहीं, कुछ भी नहीं, तो 150 इयर्स तक निरोगी काया फ्रेश। इसीलिए देवताओं को कैसे दिखाते हैं, यंग दिखाते, कभी ओल्ड ग्रे हेयर देवताज, रिंकल्ड देवताज नहीं देखे हैं, बिकॉज यंग ही होते हैं। 150 इयर्स के बाद भी यंग ही होते हैं। ओल्ड एज यहाँ आता है कलयुग में, द्वापर युग में भी इतना ओल्ड एज का अनुभव नहीं है, कलयुग के एंड में हमको ओल्ड एज का अनुभव ज्यादा हो रहा है, क्योंकि टेंशन्स, दुख, ये चैलेंजेस दुनिया में बढ़ रही है ना, कलयुग है तो बढ़ रहे हैं। तो सतयुग त्रेता में आत्माएं अच्छे से अकर्म एंजॉय कर रहे हैं, मतलब उन्होंने जो कर्म संगम युग में किया उसका रिजल्ट, जो प्रालब्ध है, उसका फ्रूट जो है, वो सतयुग त्रेता में एंजॉय कर रहे हैं। तो पूरे 2500 इयर्स आत्मा अकर्म में रहती है, कोई कर्मों का गति नहीं, कोई कर्मों का प्रभाव नहीं, कोई रिजल्ट नहीं, एंजॉय कर रही है। चलना भी एंजॉयमेंट, जाना भी एंजॉयमेंट, मिलना भी एंजॉयमेंट, जो कर्म करती है, सतयुग में भी कर्म तो होते हैं, लेकिन जो कर्म करती है वो बहुत एंजॉय करती है। यहाँ एक पीस पार्क में आप शायद देखेंगे, कल पीस पार्क में यह देखे होंगे, कोई कोई एक मॉडल रहता था, अभी शायद है या नहीं, पीस पार्क में था या कहाँ था, हाँ पीस पार्क में ये मॉडल था सतयुग का, बहुत ब्यूटीफुल, जिसमें क्या दिखाया, मना खेलपाल दिखाया, कैसे बच्चे खेलते हैं, कैसे बच्चे मना कैसे बड़े, कॉरोनेशन कैसा होता है, वहाँ विधि विधान कैसा होता है, ऐसे मूविंग मॉडल्स अपने भाइयों ने बनाया, मूविंग मॉडल्स बनाया था, जिसमें एक एक पर्टिकुलर सेक्शन था जिसमें बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। अभी स्कूल में पढ़ना मना अभी हम क्या विजुलाइज करेंगे, एक क्लासरूम होगा, बेंचेस होंगे, बड़े बड़े बैग्स होंगे, ढेर सारे किताब होंगे, ऐसे विजुलाइज करेंगे, और बच्चे बहुत बोझ में हैं, बहुत डिफिकल्ट हैं। तो यहाँ मूविंग ये जो मॉडल है उसमें क्या दिखाया कि तीन बच्चे दिखाया, एक टीचर दिखाया, ये टीचर भी ऐसे अपने अंडरस्टैंडिंग जैसे, गुरु जैसे, एकदम मतलब बुजुर्ग, दाढ़ी जैसे रखे हैं, ऐसा नहीं है, यंग सा टीचर है, बहुत डेकोरेटेड, जैसे ये बच्चे भी डेकोरेटेड है, ऐसे यंग सा टीचर है, वो बैठे हैं, वो भी एक आसन पर बैठे हैं, ये बच्चे भी आसन पर बैठे हैं, थोड़ा फर्क है, एक दो तीन इंच का फर्क है दोनों के आसन में, और अच्छे से बैठे हैं, किताब है हाथ में, और एक बच्चा जो है किताब को ऐसे देख रहा है, और उसके चेहरे पे स्माइल इधर से इधर तक है, और ऐसे देख के ऐसे पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है मुझे नहीं पता, सतयुग में क्या पढ़ाई होंगी, तो पढ़ रहा है अच्छे से एंजॉय करते हुए पढ़ रहा है। और दूसरे दो बच्चे हैं, उनके हाथ में भी किताब है, और नहीं कुछ अच्छा, कुछ अच्छी बात हम सुनते हैं तो एक दूसरे को देख के हम कहते हैं कि देखो कितनी अच्छी बात है, ऐसे देखते हैं ना, तो ऐसे एक दूसरे को देखकर ऐसे ऐसे करते करते ऐसे देखकर ऐसे पढ़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, टीचर भी बहुत खुशी से पढ़ा रहे हैं, उनके चेहरे भी मुस्कुराहट है, तो पढ़ाई भी एंजॉयमेंट है, सब कुछ जो करना है, कर्म करना है तो एंजॉय करते हुए करेंगे, कहां सतयुग और त्रेतायुग दोनों युग में। लेकिन फर्क यह है, सतयुग है संपूर्ण, माने इट इज द फर्स्ट युग, पूरी जो वर्ल्ड है, आत्माएं हैं 100% एनर्जी लेवल पर है सतयुग में, डायरेक्ट परमधाम से आए, कितने आत्माएं आए, ओनली 9 लाख आत्माएं आए, पूरे विश्व में ओनली 9 लाख आत्माएं। अभी मुझे कोई बता रहे थे कि इंडिया का पॉपुलेशन नंबर 1 हो गया, 142 करोड़ हो गया, ऐसे समाचार सुना रहे थे, तो 142 करोड़ जस्ट इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में 8 बिलियन 800 करोड़, आप सोचिए, और पूरे वर्ल्ड में ओनली 9 लाख सोल्स, 9 लाख आत्माएं अच्छे से, प्रकृति भी बेस्ट है, आनंद में है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, ना पुलिस है, ना चोर है, ना मारने मरने की बातें हैं, ना डॉक्टर है, ना नर्स है, ना घर को ताला लगता है, ना डर है, ना चिंता है, ना दुख है। अगर हम पूछेंगे सतयुग के देवता को पूछेंगे दुख आप कहेंगे तो कहेंगे क्या चीज है, उनको ये पता भी नहीं है। दुख नाम की अविद्या कहते हैं, उनको पता भी नहीं है कि दुख क्या होता है। ऐसे आराम से 2500 इयर्स तक आत्माएं रही सतयुग से लेकर त्रेता एंड तक। अब वहां आप देखेंगे भारत का चित्र दिखाया है। हम कह रहे हैं पूरे वर्ल्ड में 9 लाख आत्माएं रहती हैं। वर्ल्ड का कितना हिस्सा यूज कर सकते हैं? छोटा सा हिस्सा यूज करेंगे, वो है भारत, अभी का भारत जो इंडिया कहते हैं। वो इंडिया भी अभी काफी डिवाइड हो गया, काफी बांग्लादेश चला गया, पाकिस्तान चला गया रिसेंटली, उससे पहले भी काफी कुछ चला गया, डिविजन हो गया। लेकिन भारत जो है इस नक्शा, ये जो नक्शा है ऐसे रूप में नहीं, थोड़ा इससे बड़ा। जैसे अभी देखिए कल्चर, आप यहाँ जाएंगे इस साइड सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया आप जाएंगे तो कल्चर, इंडियन कल्चर काफी कुछ दिखाई देगा। तो पूरा इंक्लूडेड भारत ऐसा देश है जिसमें 9 लाख आत्माएं रहते थे। तो एक एक का घर कितना बड़ा होगा आप सोचिए, 9 लाख आत्माओं को कितना बड़ा बड़ा घर मिलता होगा। और घर भी कैसा होगा, वहां ईंटें मिट्टी से नहीं बनती है, ईंटें बनती है गोल्ड से, वो जो माइंस में डिग करके हम गोल्ड लाते हैं वो सतयुग में अवेलेबल रहता है, क्योंकि प्रकृति सतोप्रधान बन गई है। सतोप्रधान क्यों बनी? क्योंकि यहां आत्माएं अपने आप को सतोप्रधान बनाती हैं, तो उसका रिजल्ट वहां प्रकृति भी सतोप्रधान बन जाती है। तो सतयुग में 9 लाख आत्माएं इस प्रांत में, इस जगह में अपना राज्य चलाते हैं। राजाओं का राज्य था। अभी अब देखे तो इवन 200-300 इयर्स बैक भी राजाओं का राज्य ही चलता था। अच्छे राजाए थे, बुरे राजाए थे, वो अलग बात थे, लेकिन राजाओं का राज्य था। और बचपन में मुझे याद है हिस्ट्री का लेसन था, मे बी 5th grade में, हिस्ट्री से थोड़ा डर लगता था क्योंकि बहुत सारी चीजें याद रखना पड़ता था। ये पानीपत का युद्ध, पहला पानीपत का युद्ध, दूसरा, तीसरा, ये साल में, वो साल में, बहुत कुछ याद करना पड़ता था, तो हम थोड़ा डरते थे। तो एक हमारी एक फ्रेंड थी, बहुत स्मार्ट लड़की थी, तो एक दिन आके मुझे कहती है कि पता है हिस्ट्री के एग्जाम में तुमको 80% मार्क्स चाहिए, तो आप आधे घंटे की स्टडी बस है, तुमको 80% मार्क्स मिल जाएगा, 100% मार्क्स चाहिए तो एक और आधा घंटा, एक घंटा तुम पढ़ लो तो तुमको 100% मार्क्स मिल जाएगा। मैंने कहा ऐसा कैसा हो सकता है, इतने सारे डिटेल्स हैं। तो बोला कुछ भी नहीं, तुम मुझे कोई राजा के बारे में बताओ। तो मैं कोई रैंडम सर, मे बी राजा अशोक, बहुत अच्छा राजा थे, दोनों तरफ सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगाए, रेस्ट हाउसेस बनाए, राज्य बहुत अच्छा चलता था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत अच्छा पैटर्न थे, ये वो मैं भी बता रही थी, वो भी बता रही थी। तो बोले सिंपल, तुमको क्या करना है, सभी 12 या कुछ राजा है वो टेक्स्ट बुक में थे, तो सबके नाम लिख लो और उनके बाजू में उनके ईयर ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ डेथ लिख लो। इसको बाहर करने में तुमको आधा घंटा लगेगा, ठीक है। तुमको और करना है तो उनके अचीवमेंट्स लिख लो नेक्स्ट कॉलम में, कि उन्होंने कौन से युद्ध लड़े या कौन सा अचीवमेंट, उनको कौन सा टाइटल मिला, क्या मिला, वो लिख लो। तो ये पूरा एक घंटे में हो जाएगा पढ़ाई, ये पूरा टैबुलर जो कॉलम बनाया एक घंटे में हो जाएगा, तुमको 100% मार्क मिल जाएगा। कोई भी राजा के बारे में पूछे तुम लिखना राजा अशोक वॉज बॉर्न, अगर चंद्रगुप्त मौर्य तो राजा चंद्रगुप्त मौर्य वॉज बॉर्न इन सो एंड सो, और बाकी जो भी कॉमन चीजें हैं, सबने अपना राज्य अच्छा चलाया, सबने बहुत अच्छा देखभाल किया, सब ऐसे करते थे, तो सब अच्छे राजाएं थे, ऐसा समय था, गोल्डन पीरियड कहते हैं, बहुत अच्छा समय था ऐसा कहते हैं। तो द्वापर के युग के राजाएं तो बहुत अच्छे थे, लेकिन द्वापर युग से पहले जो सतयुग त्रेता के राजाएं थे वो और भी अच्छे थे। कौन थे? जिसकी पूजा हम द्वापर युग से करते हैं वो थे श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र। ये श्री जो लगाते हैं मतलब श्रेष्ठ थे, वो खुद श्रेष्ठ थे, उनमें कोई कमी कमजोरी नहीं थी, श्रेष्ठ थे। तो ये श्री राम गलत कर्म किए नहीं किए, जब श्री रामचंद्र त्रेता युग में थे उन्होंने कोई गलत कर्म नहीं किया, ना अपने वाइफ को डाउट किया, ना किसी को मारा, ना कुछ किया। लेकिन उनके बारे में कहानियां जो द्वापर युग में बनी वो कहानियां हमको कुछ सिखाने के लिए बनी, तो इसलिए वो कहानियां द्वापर युग की हैं। एक्चुअल जो कैरेक्टर श्री रामचंद्र का त्रेता युग का था वो श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम जिसको कहते हैं वो ऐसे थे। तो बाद में चाहे कृष्ण के लिए चाहे रामचंद्र के लिए वो बने कहानियां द्वापर युग से। क्यों बने द्वापर युग से कहानियां? क्योंकि हम द्वापर युग से हम गिरते आए हैं। सतयुग त्रेता पूरा हुआ, अब आया द्वापर युग से। 2500 ईयर्स तक आत्मा इस शरीर में रहते रहते, मैं आत्मा हूं ये मेरा शरीर समझते समझते अब द्वापर युग से क्या हो गया, समझने लगी मैं शरीर हूं, मेरे अंदर आत्मा है। मेरे अंदर आत्मा नहीं है, मेरे अंदर आत्मा है तो गलत मीनिंग हो जाता है कि कोई भटकती हुई आत्मा मेरे अंदर प्रवेश हो गई, ये मीनिंग आ जाता है। मैं आत्मा हूं ये मेरा शरीर है, मैं ड्राइवर हूं ये मेरा कार है, यही सीखा ना फर्स्ट डे, ये मैं ड्राइवर हूं ये मेरा व्हीकल है, ये मेरा कॉस्ट्यूम है। तो आत्मा अपने कॉस्ट्यूम में अच्छे से रह रही थी, वो कॉस्ट्यूम की आदत पड़ गई। जैसे एक गांव में एक पर्सन बार बार राजा का रोल प्ले कर रहा है, वो राजा अपने आप को राजा समझने लगता है और घर आके राजा जैसे बिहेवियर करेगा तो क्या कहेंगे, क्योंकि आदत पड़ गई ना। किसी किसी को होता है वो कैरेक्टर में इतना आ जाते हैं कि वो खुद ऐसे समझने लगते हैं। कैरेक्टर अलग है, एक्टर अलग है। एक्टर को कैरेक्टर में नहीं जाना चाहिए, एक्ट कर लिया डिटैच होना चाहिए। तो ऐसे आदत पड़ गई, तो द्वापर युग में आत्माएं दुखी हो गई और दुखी होने के बाद सारी चीजें शुरू होती है, सब कुछ डिवाइड हो जाता है। लैंड संकल्प डिवाइड हो जाते हैं, लैंड डिवाइड हो जाता है, दुनिया अस्त व्यस्त हो जाता है, भूकंप होता है, नेचुरल क्लैमिटीज होते हैं, कर्मों का गति अभी शुरू हो जाता है, पुण्य पाप का। आत्मा शरीर के अंदर रहकर शरीर समझती है तो पुण्य पाप का खाता शुरू हो जाता है, पाप कर्म करने लगती है, क्योंकि आत्मा अब पांच विकारों के वश हो गई। जैसे ही शरीर का भान आ गया तो पांच विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उनके बाल बच्चे बहुत सारे हैं, वो सब के वश हो गई आत्मा और आत्मा अब पाप करने लग पड़ती है। पूरा पाप आत्मा नहीं बनती है, द्वापर युग में ज्यादातर पुण्य और कम पाप, और कलयुग में ज्यादा पाप कम पुण्य, ऐसे हिसाब से चलता है। तो द्वापर युग में जो दुनिया सतयुग त्रेता में दुनिया लैंड एक था, सिंगल लैंड, कॉन्टिनेंट्स नहीं थे, लैंड एक था। जो एक्सिस है, जो जो ग्लोब का एक्सिस अभी स्लैंटिंग है ना, वो स्ट्रेट था, सब कुछ समन्वय से चलता था, कुछ भी अनरूली नहीं था, क्योंकि आत्माओं ने ये जो अपने वाइब्रेशन से प्रकृति को भी समन्वय में लेकर आ गया। तो सतयुग त्रेता में अच्छे से सब चलता है, एक एक लैंड माना एक भूमि, एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, सब कुछ एक। द्वापर युग में जब आत्माएं ऐसे द्व में आ गए, डिवाइड हो गए, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ डिवीजन हो जाता है, लैंड डिवाइड हो जाता है, लोग स्कैटर हो जाते हैं। जब लोग स्कैटर हो जाते हैं तब उनको खोज होती है ऐसे एक देश की, जो बहुत रिच था, सोने की चिड़िया थी भारत, ऐसे बहुत फेमस था भारत। तो लोग ढूंढने आए, अब कोलंबस अमेरिका डिस्कवर किया, लेकिन कोलंबस अमेरिका डिस्कवर करने के लिए नहीं निकला, भारत डिस्कवर करने के लिए निकला। उसको मिला अमेरिका, तो जब वो नेटिव अमेरिकन्स को देखा तो उसने कहा मिल गया इंडिया, रेड इंडियंस, इसलिए आज तक उनको रेड इंडियंस कहते हैं, जो नेटिव अमेरिकन्स होते हैं, जो आदिवासी होते हैं वहां के, उनको कहते हैं रेड इंडियंस, क्योंकि उनको लगा इंडिया मिल गया। वास्को डी गामा आया इंडिया को सी रूट, क्यों चाहते थे कि इंडिया को सी रूट, इंडिया के लिए सी रूट ढूंढना क्यों चाहते थे, क्योंकि दे न्यू द ग्लोरी ऑफ भारत, भारत की जो ग्लोरी थी, जो रिचनेस था, वो सब जगह व्याप्त था, ऐसा एक देश है, हमको वहां जाना चाहिए, सबको पता था। तो इसलिए टर्क्स आए, ग्रीक्स आए, जितने भी ब्रिटिशर्स, अभी 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 की बात है, ब्रिटिशर्स आए, आए लूट के चले गए। जब भारत में, जब ये डिवीजन हुआ द्वापर युग में, ये भारत में भक्ति शुरू हुई, पहला जो भक्ति है वो शुरू हुई शिवलिंग का, क्योंकि शिव परमात्मा निराकार से प्राप्ति हुई थी ना आत्मा को, तो लिंग के आकार में, अब वो पॉइंट के आकार में उनकी पूजा करते थे। अब पूजा कैसे करें, भक्ति कैसे दिखाएं, अभिषेक कैसे करें, कैसे उनको वो दूध चढ़ाए, कैसे प्रेम दिखाए, इसलिए वो आकार बनाया, ताकि हम जो डाले वो दूध वो चला जाए, वो आकार बनाया, लेकिन ओरिजिनली डॉट को वर्शिप करते थे। तो जब शिवलिंग की पूजा शुरू हुई तो पहला मंदिर बना सोमनाथ मंदिर, और सोमनाथ मंदिर आप सुने होंगे बहुत ही रिच गोल्ड और ज्वेल्स स्टडेड मंदिर। इसको मोहम्मद गजनी आए और 17 टाइम्स लूटे। आप सोचिए एक बार में कारवान भर भर के कितना ले जाएंगे, 17 टाइम्स आके लूटे तो कितना लेकर गए होंगे। तो ये 17 टाइम्स लूट कर लेकर गए, और भी बहुत कुछ सबने लूटा है, कोहिनूर डायमंड हो, पीकॉक थ्रोन हो, जो हक से लिया हो या लूट कर लिया हो, बात एक ही चीज है, बहुत कुछ गया है। आज भी एंटीक पीस जो कहते हैं, जैसे देवताओं की मूर्तियां आदि होते हैं, क्योंकि भारत जितना प्राचीन देश और कोई देश नहीं, इसलिए भारत देश को मदरलैंड कहते हैं, क्योंकि सभी देशों का मदर है, हमारी मदरलैंड है वो ठीक है, लेकिन सभी देशों का मदर है, इसलिए आज तक भी भारत देश ने किसी पर आक्रमण नहीं किया है, कोई भी कारण से डिफेंस किया है लेकिन आक्रमण नहीं किया है, न करेंगे। कितना भी जैसे और देशों में हिंदुओं को इतना मान नहीं देते हैं, इतना फ्रीडम नहीं देते हैं, यहाँ पे और धर्मों को मान देते ही है और अकोमोडेट करते ही हैं। कितना भी लोग कहे नहीं ऐसा है वैसा है, थोड़ा पॉलिटिकल रीजंस के लिए कुछ होगा हंगामा, सब फिर सेटल हो जाते हैं। किसी को भी पूछो कोई और धर्म वाले से आपका वैर है, नहीं कहेंगे नहीं हमारे ये भी फ्रेंड्स है, ये भी फ्रेंड्स है, ये भी फ्रेंड्स, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा मनाते हैं, हर एक के निजी जीवन में सब एक्सेप्टेबल है। ऑन द होल एक मूवमेंट बन जाता है ना, तो जैसे हमारे यहाँ तेलंगाना मूवमेंट बना था, तो लोग अपने आप को जला रहे थे, बसेस जला रहे थे, सब एक होता है ना, एक जोश क्रिएट करते हैं। कौन क्रिएट किया? ये बच्चा घर से निकल के ये नहीं सोचा कि मैं अपने आप को जलाऊंगा, लेकिन पॉलिटिकली वो प्रेशर करते हैं, मूवमेंट करते हैं, जोश दिलाते हैं, जय तेलंगाना जय तेलंगाना, तो अपने आप को जला देता है। तो ऐसे आजकल पॉलिटिकली काफी कुछ चल रहा है, नहीं तो एक्चुअली हम बहुत अकोमोडेटिव है, हर चीज को अकोमोडेट कर सकते हैं, क्योंकि इस देश, ये देश ही मदरलैंड है, तो हम भी उस मदरलैंड के बच्चे जो है ऐसे ही है ना, क्योंकि हमसे ही बनता है देश, देश मिट्टी से नहीं बनती है, हमसे बनता है देश, हमारी भावनाओं से बनती है देश। तो ऐसे द्वापर युग से ये दुख शुरू होना और ऐसे मंदिर बनना सब करना, पहले पहले पूजा होती है देवताओं की, शिवलिंग के बाद देवताओं की, जो सतयुग त्रेता में होकर गए हैं, जैसे श्री कृष्ण, श्री नारायण या क्या कहते हैं श्री राम, इन सब की पूजाएं होने लगती है द्वापर युग से। बना द्वापर युग के शिवलिंग के बाद फिर इनकी पूजा होने लगती है। तो अपने ही मतलब जैसे वो पूर्वज होते हैं ना, जैसे कहते हैं ना इष्ट देव, इष्ट देव कौन होते हैं, हमारे जो कुलदेव होते हैं, आजकल भी बहुत आज के जमाने तक बहुत चलता है, कुलदेव होते हैं जो अपने पूर्वज होते हैं उनको कुलदेव मानते हैं। तो ये भी हमारे पूर्वज हैं जिसकी हम पूजा करते हैं, लेकिन बहुत श्रेष्ठ थे इसलिए पूजा होती है। कोई भी श्रेष्ठ न हो तो उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए किसी की। आप यहाँ देखेंगे कितने बड़े बड़े, आप हर एक का बायोडाटा सुनेंगे, 60 इयर्स 70 इयर्स, ऐसे बड़े दादी हैं, ये दीदी हैं, ये भाई जी हैं, ऐसे सुन रहे हैं, लेकिन आज तक आपने किसी को देखा किसी का पैर छूते हुए, किसी के किसी को माला चढ़ाते हुए, किसी को ये क्या कहते हैं एक सिंहासन पर बैठाते हुए? क्यों नहीं है? एक तो हम स्टूडेंट्स हैं और दूसरा ये गुरुडम नहीं है, हमारा गुरु तो सदगुरु तो एक परमात्मा ही है, बाकी सब स्टूडेंट्स ही है। आप भी स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आज मैं यहाँ बैठी हूँ, कल मैं यहाँ बैठी थी, कल वापस मैं यहाँ बैठूंगी। हमारे भी नियम अनुसार एक क्लास होता है सुबह 7 से 8, जिसमें हम सुनते हैं, हम सभी सुनते हैं, जो भी है, चाहे 60 वर्ष के मेडिटेशन प्रैक्टिशनर्स हो या 60 दिन के, सभी एक ही क्लास में बैठ के सुनते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति वस्तु वस्तु पदार्थ कोई भी चीज को हम पूजा नहीं कर सकते हैं, चीज को मतलब व्यक्ति को, जैसे फलाना गुरु है उनका आजकल बहुत चलता है बिजनेस, उनका चरण स्पर्श करे तो 50,000 आप दो या 1,00,000 दो तो उनका चरण स्पर्श कर सकते, चरणामृत पी सकते तो आपको आपके पाप धुल जाएंगे या आपका मनोकामना सिद्ध हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो कह रहे हैं कि मेरे चरण स्पर्श करो उनसे आप थोड़ा सावधानी रहिए, क्योंकि वो थोड़ा ईगो में आ गए हैं अभी, पहले उनकी शुरुआत ईगो से नहीं शुरू हुई। कोई भी गुरु ईगो से शुरू नहीं करते हैं, शुरुआत करते अच्छे भावना से है, लेकिन सुनते सुनते आप ही हो, आप ही हो, आपने कहा हो गया, आप महान हो, आप महान हो करते मैं महान हूँ फीलिंग आ जाता है, बहुत सुनाना पड़ता है अपने आप को, नहीं परमात्मा के मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, नहीं मैं ऐसी हूँ, ऐसा बताना पड़ता है अपने आप को। तो ऐसे तो उनसे सावधान रहिए। तो ये सत्य, ये द्वापर युग से पूजा शुरू होती है शिवलिंग की और फिर देवताओं की। फिर कलयुग आता है तो पूजा होती है हरेक की, पेड़ की भी पूजा और इमेजेस, इमेजेस माना जैसे गणेश जैसा इमेज है। गणेश का इमेज क्या है, जैसे मुझे मैं सेंटर पर बैठी थी, मैं कोर्स करा रही थी किसी का, हस्बैंड एंड वाइफ का, उनका 11 साल का लड़का था। अब ये 11 साल के लड़के बहुत होशियार होते हैं, आपने नोट किया कि नहीं पता नहीं, मैंने 11 12 इयर्स में बहुत ही स्मार्ट, मतलब इतनी मैच्योरिटी नहीं आई कि हम एक क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, और इतनी भी बचपना नहीं है कि कुछ जानते नहीं है, ओबीडियंट है, वो स्मार्टनेस आ जाता है। तो ये 11 साल का लड़का मेरे को चैलेंज करता है, पूछता है सिस्टर आप कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा, किसी ने कहानी सुनाई उनको कि गणेश को जब शिव जी मारते हैं, मतलब सर काटते हैं, तो फिर पता चलता है ये तो मेरा बच्चा है, तो जाके ढूंढता है हाथी का वो सिर लेकर आता है और ये अटैच कर देता है और फिर वो जिंदा हो जाता है, मतलब गणेश इस रूप से इसलिए मानते हैं। तो ये प्रश्न ये बच्चे का है कि सिस्टर जब उनके फादर को वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सर्जरी वर्ड नहीं यूज किया, अटैच करना, कुछ वर्ड यूज किया टेक्निकल, जब उसको सर अटैच करना आता है तो वो जो बाजू पड़ा है वही सर अटैच करके दे सकता था ना, जाके हाथी का सर ढूंढने की क्या जरूरत थी, उसने ऐसा पूछा। तो मैंने कहा अभी इस बच्चे को कि मैं क्या आंसर दूं। तो मेरे साथ एक सेवा में एक छोटा बच्चा था, 11 साल का बच्चा, तो वो कुछ कर रहा था वहां बाजू में बैठ के, तो वो मुड़ के उसने कहा मुझे पता है आंसर। तो उसकी दीदी ने उसको बताया, दीदी कुछ 16-17 साल की होंगी, तो उसने बताया एडसेंस देखो गणेश का जो है ना हर एक चीज का एक इम्पोर्टेंस होता है, उसको ये बड़े कान क्यों दिखाए क्योंकि लिसनिंग पावर है, और हाथी का सर दिखाए बहुत इंटेलिजेंट मेमोरी पावर बहुत होता है, आंख छोटे दिखाए बिकॉज ये क्या बोलते हैं परखने की शक्ति बहुत होती है, पेट बड़ा दिखाए कि उनमें समाने की शक्ति बहुत होती है, तो ये सब बताया एडसेंस उसकी बहन ने। तो ये कहता है कि अगर हाथी का सर नहीं दिखाते ना, तो हाथी जैसा नहीं दिखाते ना, तो मीनिंगफुल कैसे बनता, सिग्निफिकेंस कैसे दिखाते, तो इसलिए दिखाना पड़ा ऐसा। तो वो भी आंसर दे दिया, ये भी सेटिस्फाई हो गया, मैं भी सेटिस्फाई हो गई। तो रियल में यही बात है, सिम्बोलिज्म है। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, स्कूल की फ्रेंड, वो समझिए अभी आई है मेरे पास मेरे बर्थडे को याद करते हुए, मेरे फेवरेट फ्लावर्स लेकर आई है और मुझे उसने दिया है। ओके, शी इज ब्रॉट दोस फ्लावर्स। तो मैं क्या करूंगी, आई एम सो सरप्राइज, प्लेजेंटली सरप्राइज कि तुमने मुझे, मेरा बर्थडे तुमको याद है। तो वो कहती है हाँ हर साल मैं याद करती हूँ, टच में नहीं हूँ, नहीं पता था तुम कहाँ हो, अभी पता चला। तो मेरा फेवरेट फूल भी याद है, हाँ जरूर याद है। तो मैं बहुत खुशी से उसका प्यार स्वीकार करती हूँ और वो फूलों को क्या करूंगी, एक फ्लावर वाज में मैं फूल को डालूंगी और फिर बहुत प्यार से उसको रखूंगी। सारा दिन हमारा बीतता है, बातचीत करते सब कुछ हो जाता, वो चली जाती है, फिर वो फूलों को क्या करूंगी, अच्छे से एक जगह पे रखूंगी, अच्छे से बेस्ट जगह पे रखूंगी जहां मेरी नजर जाए। जब भी उसको देखती हूँ, फूलों को देखती हूँ, तो उसका प्यार याद आता है कि कैसे उसने, बहुत खुशी मिलती है। अच्छा नेक्स्ट डे क्या करती हूँ, पानी चेंज करती हूँ, फिर फूलों को थोड़ा बहुत चेक करके फिर रखती हूँ, तीसरे दिन फिर रखती हूँ, चौथे दिन उसको डस्टबिन में फेंकना है कि नहीं रहेगा, अब हो गया उसका जर्नी हो गया, तो उसको जाके डस्टबिन में फेंकती हूँ। उसका प्यार नहीं फेंका, ओनली वो फूल को फेंका, वो प्यार 20 साल के बाद भी याद रहेगा, वो दिन मेरे बर्थडे पे कैसे आई वो मेरी फ्रेंड, वो याद रह जाएगा, वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो जो प्राप्ति मुझे हुई वो याद रह जाएगा। ऐसे ही ये जो गणेश की मूर्ति जो बनाते हैं, दुर्गा माता की पूजा करते हैं 11 दिन 9 दिन 13 दिन जो भी करते हैं, ये मीनिंग ये है, क्यों ये प्रथा शुरू हुई कि आप प्रतिष्ठा करो, उनसे प्रेरणा लो, वो दिनों तक बार बार याद दिलाओ, जब आपको स्मृति आ गई तो उसको जाके इमर्स कर दो। ऐसा नहीं कि हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, नहीं, इमर्स कर दो, हमने जो सीखना है सीख लिया इन दिनों में, जितने भी दिन आपको रखना है, आपको लगता है 3 दिन में आप सीख सकते हैं तो 3 दिन ही रखो, आपको लगता है 21 दिन में सीखना है तो 21 दिन रखो। जब ऐसी प्रथा शुरू हुई तो गणेश की जो चीजें हैं, जो मीनिंग है, सिग्निफिकेंस है, वो भी हम अपने आप को याद दिलाई, और दुर्गा माता कैसे दिखाती, अष्टभुजाधारी, माने अपने अंदर की, कल अपने अष्ट शक्तियों का सुना ना, अपने अंदर की शक्तियों को धारण करके जो असुर है उसका संहार कर रही है। कौन है वो असुर, कौन है वो असुर, हमारे अंदर असुर है, कहीं और नहीं है, वो दांत ऐसे, वो सिंह ऐसे, कोई असुर नहीं है, हमारे अंदर के असुर है, ये असुरों का संहार करना है हमारे अंदर की शक्तियों के आधार से। तो ये हम भूल गए हैं, बस हम करते हैं और निकालते हैं, और बीच में आजकल तो ऐसा हो गया, पहले तो भक्ति भाव तो रहते थे, आजकल तो ऐसा हो गया तंबोला खेलते हैं, म्यूजिकल चेयर्स खेलते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, गणेश की मूर्ति को वहां रखते हैं और यहाँ एंटरटेनमेंट चलता है, थोड़ा बहुत पुजारी वो जो है पूजा कर लेता है उनका काम, हमारा काम है अपने आप को एंटरटेन करना, अच्छा एक्सक्यूज है एंटरटेन करने का, ऐसा हो गया। तो जो ओरिजिनल मीनिंग है वो चला गया और हम ऐसे धीरे धीरे अब सिंबल्स के बाद आते हैं, हम पेड़ से फल मिलता है तो पेड़ की पूजा करते हैं, गाय से दूध मिलता है गाय की पूजा करते हैं, आग से डर लगता है आग की पूजा करते, धीरे धीरे पूजा की विधि पंचभूतों की पूजा करने लगते और धीरे धीरे मनुष्यों की पूजा करने लगते हैं। मनुष्य मनुष्य की पूजा नहीं करनी चाहिए लेकिन मनुष्यों की भी पूजा करने लगते हैं और ऐसे ऐसे करते करते पूजा की विधि भी ऐसी हो गई है जो हम फिर खोज करने लगते हैं, सत्य की खोज करने लगते हैं, सत्संग करने लगते हैं, फलाने ये है ये बुक्स में खोज करने लगते हैं। लेकिन आत्मा जो ओरिजिनल सतयुगी थी वो नीचे आते उतरते उतरते कलयुग के एंड तक पूरी उसकी बैटरी लो हो गई। बैटरी इतनी लो हो गई कि चाहते हुए भी खुश नहीं रह पा रहे, चाहते हुए भी शांति में नहीं रह पा रहे, चाहते हुए भी प्यार से व्यवहार नहीं कर पा रहे। आप किसी को पूछो आपको गुस्सा करना अच्छा लगता है? नहीं। आपको पाप कर्म करना अच्छा लगता है? नहीं। मजबूरी है क्योंकि आत्मा की बैटरी डाउन हो गई। द्वापर युग से लेकर कलयुग के एंड तक फास्ट फास्ट बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। क्यों? क्योंकि पाप कर्म करने लगती है आत्मा और बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है और कलयुग के एंड तक पूरी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। अच्छा, फिर से इस कहानी को ये ऊपर आप देखेंगे मनुष्य के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। इस कहानी को शुरुआत से देखेंगे। सतयुग में आत्माएं थी 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न और अहिंसा परमो धर्म। ऐसी देवताओं की हम महिमा करते हैं, गायन करते हैं। रियली ऐसे थे सतयुगी आत्माएं। 16 कला संपूर्ण माने फुल सन डायनेस्टी, फुल मून जैसे कम ज्यादा नहीं, फुल कंप्लीट। जो कलाएं जीने की होनी चाहिए वो फुल है। और त्रेता युग में आ जाती हैं 2 कला कम 14 डिग्रीज और द्वापर युग में होते हैं 8 डिग्रीज और कलयुग में होते हैं 9 कला। आज कोई कला विहीन है, हम कोई कलाएं नहीं रह गई हैं अब कलयुग के एंड तक। सतयुग में जब शुरुआत होती है तो आत्माएं 9 लाख हैं। 9 लाख बढ़ते 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 क्या हो गया, त्रेता के एंड तक 33 करोड़ हो गए हैं। 33 करोड़ माना वही 33 करोड़ जिसके आज हम पूजा करते हैं। इंडिया इज नोन एज द प्लेस ऑफ 33 करोड़ गॉड्स एंड गॉडेसेस। 33 करोड़ आप गिनती भी नहीं कर सकते हैं कितने की पूजा करते होंगे, 10-12 करते होंगे, 10-12 को देख या 20 को देखा होगा। 33 करोड़ देवी देवताएं हैं और ये हरेक का नाम है, हरेक की पूजा होती है। जो सतयुग त्रेता में होकर गए हैं उन सबकी पूजा होती है धीरे धीरे। पहले सतयुग में, द्वापर युग में सतयुग की आत्माएं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते और सबकी पूजा होती रहती है। तो पॉपुलेशन बढ़ता है। कैसे पॉपुलेशन बढ़ता है? जो आत्माएं परमधाम से आई वो रीबर्थ में आई और जो नई आत्माएं परमधाम से आई वो उनका भी जन्म। तो पहले आए 9 लाख, फिर थोड़ी आत्माएं एडिशन हुए, ऐसे करते करते आज हम 8 बिलियन टच हो गए और सारी दुनिया में 8 बिलियन आत्माएं हैं। तो सतयुग में क्योंकि आत्मा सतो प्रधान थी, सतो प्रधान माने कंप्लीट प्योर सत्य के साथ थी, तो इसीलिए आत्मा अपने, जैसे मैंने कहा आयु 150 इयर्स तक आत्मा एवर यंग, अमर अजर जो भी कहे, सब जो महिमा है वो सब वहां लागू होता है। और आत्मा 150 इयर्स तक रहती है तो 1250 इयर्स में ओनली 8 जन्म और त्रेता युग में थोड़ी सी आयु कम हो जाती है तो 12 जन्म हो जाते हैं। तो सतयुग त्रेता मिलाकर 20 जन्म और द्वापर युग में 21 जन्म 21 बर्थ्स और कलयुग में 42 बर्थ्स। सतयुग त्रेता में पूरी आयु तक जीते हैं। आत्मा अगर जन्म लेती है तो 150 इयर्स तक जीती है और जब 150 इयर्स होते हैं तो आत्मा को साक्षात्कार होता है कि मेरा नेक्स्ट जन्म ऐसा होगा, मैं जाकर छोटा बच्चा बनूंगा, तो बहुत खुशी से आत्मा जाती है नेक्स्ट जन्म के लिए। सतयुग में कोई रोते नहीं है, जब शरीर छोड़ते हैं तो कोई रोते नहीं है, खुशी से विदा करते हैं क्योंकि उनको नया कॉस्ट्यूम मिलने वाला है। तो 150 इयर्स तक रहती है त्रेता युग में भी 120 इयर्स तक रहती है, लेकिन द्वापर युग में कोई फिक्स्ड आयु नहीं। 1250 इयर्स में 21 जन्म मना, कभी भी जन्म ले सकते हैं, कभी मर सकते हैं, 100 इयर्स भी रह सकती है, 20 इयर्स भी रह सकती है, 2 डेज भी रह सकती है। और कलयुग में हो जाते 42 जन्म। क्यों ये जन्म ज्यादा होते हैं? जितने हमारे कर्म बढ़ते जाते हैं उतना हमारा ये जो जन्म है उस कर्मों को खाता, कर्मों के खाता को फिनिश करने के लिए हमको जन्म बाय जन्म लेना पड़ता है। सबसे ज्यादा हमारा कर्मों का खाता फिनिश होता है मृत्यु और जन्म में। इसलिए आत्मा का ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, जब ये फैमिली से जाती है और नई फैमिली में जाती है, तो दोनों फैमिलीज माने यहाँ से जो विदा हुई और यहाँ से जो स्वागत कर रहे हैं, ये दोनों फैमिलीज इस आत्मा को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट समय है। आत्मा बहुत गोत्रू करती है, वो अकाउंट सारे फिनिश करती है। जब आत्मा शरीर छोड़ रही होती है तो आत्मा को जैसे एक फ्लैश आता है कि मैंने जीवन कैसे जिया, और बहुत पश्चाताप करती है आत्मा, अरे मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। पश्चाताप से काफी कुछ थोड़ा वो क्लीन स्लेट बनते जाता है और माँ के गर्भ में 5th मंथ में प्रवेश करती है। तो ये 4 महीने में आत्मा जेल का अनुभव करती है, क्योंकि मैं फ्री हूं ना, ऐसे चल सकती हूँ, फिर सकती हूँ, सब कुछ। तो इमेजिन, बंद दिया, एक वूम में बंद दिया आत्मा को, तो क्या होता है, बहुत पश्चाताप करती है, रिग्रेट करती है कि, और प्रॉमिस करती है आत्मा कि मैं फिर पाप नहीं करूंगी। तो इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत इनोसेंट, बहुत प्योर पैदा होता है, क्योंकि काफी कुछ स्लेट क्लियर हो गया, लेकिन संस्कार खत्म नहीं हो गए, कर्म हो गए नहीं हुए, और कर्मों के हिसाब किताब पूरे नहीं हुए। इसलिए जब शरीर में आती है, फिर से बच्चा बड़ा होते होते अपने पिछले जन्म के संस्कार इमर्ज होने लगते हैं, और फिर से जैसे गुस्से वाला था अगर पिछले जन्म में, तो बचपन से ही ऐसे जिद करना, इरिटेट होना, गुस्सा करना, वो इमर्ज होने लगता है और फिर से पाप कर्म बनाने लगते हैं। तो इसलिए फिर और जन्म पुनर्जन्म में आना पड़ता है। ऐसे 42 जन्म लेती है कलयुग में। तो 8+12=20, 20+21 द्वापर युग में 41, और 41+42 कलयुग में 83। और 84th जन्म है यहाँ, जो आज आपका जन्म, ये आज या जिस समय भी आपका जन्म हुआ, आपको एनलाइटनमेंट हुआ कि हाँ मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, परमात्मा के संतान हूँ, परमात्मा से शक्ति ले सकती हूँ, अपने आप को मुझे परिवर्तन करना है, मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया, तो ऑटोमेटिकली हमारा ये संगम योगी जन्म है। वी आर नो लॉन्गर इन कलयुग। मतलब जैसे मुझे बचपन में बहुत शौक था, मैं सवेरे सवेरे उठकर देखती थी कि सूरज कैसे उगता है, मतलब कहाँ, कौन से वो मोमेंट होता है जब सूरज की रोशनी, मतलब अंधेरा खत्म और रोशनी शुरुआत कहाँ से होती है, मुझे वो मोमेंट कैच करना था, कभी कैच नहीं कर पाई, लेकिन उस कारण से सवेरे उठने की आदत पड़ गई थी। तो सवेरे सवेरे उठकर अच्छे से मैं टेरेस पे या गेट के पास जाके अच्छे से एंजॉय करती थी, वो जेंटल ब्रीज जो होता है, बहुत एंजॉय करती थी वो टाइम को। तो मेरे लिए वो सवेरा है, मेरे घर में जो सोए हैं उनके लिए तो रात ही है ना, जब तक उठेंगे नहीं है तो उनके लिए सवेरा नहीं है। तो संगम युग हमारे लिए सवेरा है, दुनिया कलयुग में है, अभी तक वो रात में है, लेकिन हमारे लिए सवेरे की शुरुआत हो गई। सवेरे की शुरुआत मना, हम कलयुग में रहकर सत्युग का अनुभव कर रहे हैं, यह है संगम युग। तो हम यहाँ यह संगम युग में हैं और हम अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, स्व परिवर्तन कर रहे हैं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर रहे हैं। आप सोचेंगे हम चेंज होंगे तो विश्व कहाँ चेंज होगा, नहीं। यहाँ एवरी 3rd संडे एक बहुत ब्यूटीफुल एक एक्सरसाइज होता है, इंटरनेशनल मेडिटेशन आवर। विश्व भर के जितने भी सेंटर्स है, जितने भी बाबा के बच्चे हैं, हर एक अपने अपने सेंटर में बैठकर संगठित रूप में योग अभ्यास करते हैं विश्व को वाइब्रेशंस देने के लिए, जैसे कल दीपावली ने कराया था कि विश्व को वाइब्रेशंस दे, कि हमने तो बहुत ले लिया, देना भी तो है, वर्ल्ड को भी देना है। तो ये पूरे वर्ल्ड में जितने भी आत्माएं हैं, आप सोचिए एक एक संकल्प से वो करते हैं तो वाइब्रेशंस जाते होंगे कि नहीं। अब आप कहेंगे अगर वाइब्रेशंस जाते हैं तो क्यों नहीं दिखाई देता है। विनाश का सीन, विनाश का, कोई भी चीज का विनाश करो वो दिखाई देता है, स्थापना गुप्त रहता है। अब बीज बो कहां दिखाई देता है, बीज काम कर रहा है या नहीं, मर गया कैसे पता पड़ेगा, जब तक पत्ता का इंतजार करना पड़ेगा। स्प्राउट अगर हो तो समझ में आया हाँ ग्रोथ हो रहा है अंदर। स्थापना का कार्य गुप्त हो रहा है और विनाश का वो बहुत जोर से दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए ये जो समय है संगम युग में दो कार्य चल रहे हैं। एक कार्य ये है कि विनाश का कार्य तीन रूप से हमको दिखाई देंगे। विनाश का कार्य तीन रूप से दिखाई देगा। एक प्रकृति के जो कलामिटीज हैं, अर्थक्वेक सुनामीज जो भी प्रकृति के कलामिटीज हैं, कोविड जैसे भी सब कुछ प्रकृति के कलामिटीज हैं। सेकंड सिविल वॉर्स, आपस में ग्रुप्स लड़ेंगे। और थर्ड न्यूक्लियर वेपन्स। ये तीनों रूप से, मतलब एक बंद कमरे को बंद रखे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सफाई करने की कोशिश करें तो धूल उड़ेगा ना। अब धूल उड़ रहा है देख रहे हैं, लेकिन जो सफाई कर रहा है उसको पता है कि सफाई हो रहा है, क्लीन हो रहा है। 10 बार करेंगे तो क्लीन हो जाएगा, डोंट वरी, एकदम क्लीन हो जाएगा। ऐसे साधना देते हैं ना, ऐसे हम जितना कंट्रीब्यूट करेंगे क्रिएशन के कार्य में उतना हम क्रिएशन के कार्य को पहचान पाएंगे। अभी ओनली विनाश विनाश दिख रहा है, इसलिए विनाश की बातें चलती है। डेट्स देते हैं 1999, 2012, ऐसे डेट्स दिया जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसे थोड़ी कि आज हम जिंदा है कल सभी पूरे मर जाएंगे, महाप्रलय हो जाएगा। महाप्रलय नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रात दिन में कन्वर्ट होता है और हम फिर से सतयुग में चले जाते हैं। तो संगम युग में दोनों कार्य चल रहे हैं, एक विनाश का कार्य जो दिखाई दे रहा है और हमारे संकल्पों से स्थापना का कार्य। जितना हम स्थापना के कार्य में सहयोगी बनेंगे उतना सतयुग के आदि में आएंगे। जैसे आप समझो, आप जिस रास्ते में रोज जाते हैं वहां एक बिल्डिंग बन रहा है, आपको पता चला बहुत अच्छे बिल्डर हैं, हम बिल्डिंग बन रहा है, चलो एक फ्लैट बुक करते हैं। हम वैसे भी सोच रहे थे कि एक बिल्डिंग, मैंने एक फ्लैट खरीदना, चलो बुक करते हैं। तो आपने पैसे दिए उसको बिल्डर को और आपने इन्वेस्ट किया उसमें, तो जब बिल्डिंग बन जाएगा तो आपको मिलेगा कि नहीं एक फ्लैट, जिसकी जिसकी वो लैंड है उसको मिलेगा, बिल्डर को मिलेगा, आपको मिलेगा, जिसने इन्वेस्ट किया उनको मिलेगा। और जिसने देखा कि अच्छा बिल्डिंग बन रहा है बहुत अच्छा है, उनको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जो बनाता है, जो अपने संकल्पों से बनाता है उसको मिलता है, जो नई दुनिया का। जितना 100% एनर्जी लेवल में जाएंगे तो हम सतयुग के आदि से आएंगे। और इसको कहते हैं हीरो पाटदारी, ऑलराउंडर, 84 जन्म के पाटदारी हम बन जाएंगे। तो ऐसे सतयुग से लेकर कलयुग के एंड तक हमारा ये पाठ चलता आया है और चलता रहेगा। कल्प के बाद फिर एक और कल्प, हमने टाइम को लीनियर देखा लेकिन टू एंड्स को मीट करेंगे तो टाइम साइक्लिक है। इसलिए बड़ा प्रश्न है, बीज पहले या वृक्ष पहले, इटर्नल है, अनादि है। तो ये अनादि सीढ़ी चढ़ना उतरना बहुत ही सहज मिल जाता है। तो कर्मों में एक दो बातें और सुनाना चाहती हूँ। कर्मों के लिए कहते हैं हम पाप कर्म करते हैं तो एनिमल बन जाते हैं, ऐसे मतलब कुत्ता बनेंगे बिल्ली बनेंगे। तो उसके हिसाब से आज का ह्यूमन पॉपुलेशन जीरो होना चाहिए था, क्योंकि सभी पाप कर रहे हैं। जीरो तो नहीं हुआ, पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है। तो ये क्लैरिफाई करना जरूरी है, अगर आम का बीज बोए तो आम का वृक्ष आएगा, केले का बीज बोए तो केले का वृक्ष आएगा। जैसा बीज बोएंगे वैसा वृक्ष आएगा। हम आत्मा, ह्यूमन आत्मा है तो ह्यूमन बीइंग ही बनेंगे, एनिमल नहीं बनेंगे। ना हॉर्स डॉग बनेगा, ना डॉग कैट बनेगा, ना कैट एंट बनेगा। हर एक अपने अपने स्पीशीज है। इस दुनिया में 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख स्पीशीज है, हम 84 लाख स्पीशीज में नहीं जाते हैं, टोटल 84 लाख स्पीशीज है जिसमें हम 84 जन्म मनुष्य आत्मा के रूप में आते हैं। हम सोच रहे हैं हम बहुत इवॉल्व हो रहे हैं, इवॉल्व की बात नहीं है, वो अभी 100 इयर्स से ये सब टेक्नोलॉजी निकल रहा है। क्यों 100 इयर्स से निकल रहा है? क्योंकि संगम का समय है, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी सतयुग में। बाकी हम क्या बोलते हैं उससे, वो वानर से मनुष्य नहीं बने, श्रेष्ठ मनुष्य से साधारण मनुष्य बन गए, ऑलमोस्ट डेविलिश बन गए हैं, और फिर से हम श्रेष्ठता की ओर जाएंगे, हमारे अंदर की श्रेष्ठता आ जाएगी। हम इस समय कर्मों के खाता फिनिश करना है तो दो मार्ग है, एक है उसका दुख अनुभव करना, जैसे शारीरिक बीमारियां आती है, व्यापार में कुछ होता है, कुछ संबंधियों में कुछ होता है, उसका दुख अनुभव करके फिनिश करना, ये द्वापर युग से कर रहे हैं। लेकिन उससे क्या होता है, वो खाता बढ़ता है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, मैं गेट के बाहर खड़ी हूँ और एक व्हीकल आके मुझे हिट करके चला जाता है, पीछे मुड़ के देखते भी नहीं कि ये जिंदा है कि नहीं, चले गए। उनको भी डर लगता है कि पुलिस पकड़ेंगे, जो भी है सजा होंगे, तो चले गए। अब मैं इरिटेटेड हूं, समझे कि क्या है, कैसे करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर दिस, दे जस्ट हिट एंड गो, दे डोंट इवन बॉदर। मैं इरिटेटेड अगर हूं तो मेरे कर्मों के खाता फिनिश करने के बदले मैं इसको बढ़ा रही हूं। मैं अपनी जगह पे खड़ी हूं, वो आके हिट करके क्यों गया, मैं वो हिट करके गया, मेरा वो फ्रैक्चर हो गया, 6 मंथ्स बेड रेस्ट कहा डॉक्टर ने, ये सब मेरा ही कर्मों का खाता है। अगर मैं मुझे हिट नहीं करता तो मैं बाथरूम में फ्रैक्चर हो सकता है, कुछ तो होगा। थैंक यू भैया, आपने मेरा कर्मों का खाता फिनिश कर दिया, मेरा लोन चुक तो हो गया, थैंक यू वेरी मच करके उसको नमस्कार करना, ना कि उसको खोजना क्या है क्या है। उसका कर्मों का खाता बनता है क्योंकि वो मुड़के देखना चाहिए था कि माने यू शुड हैव टेकन केयर ऑफ दैट सोल, ही डिडंट डू, हिज नेगेटिव खाता विल बी डन, दैट इज हिज थिंग, दैट इज नन ऑफ माय बिजनेस। मेरा बिजनेस क्या है, मेरे कर्मों के खाते से। अगर मैं इरिटेट हो जाऊं तो घर वालों से इरिटेट होंगे, और कर्मों का खाता और बढ़ाऊंगी और डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए हम क्या कहते हैं कि अच्छा वेरी गुड, डेट पूरा हो गया। ऐसा होता है ना, जब डेट पूरा हो जाता है तो बहुत हल्का फील होता है, अच्छा डेट पूरा हो गया, वेरी गुड, अच्छा हो गया। तो फील नहीं होता है, किसको फील नहीं होता है, जिसके पास बहुत आमदनी है, बहुत बैंक बैलेंस है, उसको डेट चुक तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके पास बैंक बैलेंस नहीं है, माना समझो मेरा इनकम 20,000 रुपीस पर मंथ है और मुझे पता चला कि मेरे पापा ने 50 लाख लोन लिया, 20,000 में मैं क्या चुक तो करूंगी। मेरे पास ऑलरेडी 2 करोड़ या 5 करोड़ या 10 करोड़ है, 50 लाख ओके ले लो। जिसके पास आमदनी बहुत है उसको देना, डेट चुक तो करना डिफिकल्ट नहीं होगा। तो योग से हम क्या कर रहे हैं, परमात्मा से शक्ति ले रहे हैं और उस शक्ति के अनुसार और अपने कर्मों के अनुसार हम जमा इतना कर रहे हैं कि कोई भी चीज सिचुएशन हमको इफेक्ट नहीं करता है, हमको बुरा नहीं लगता है, फिनिश कर लेते हैं। लोग कहते हैं अरे इतना कैसे फेस किया, नहीं नहीं वो तो हो गया, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे हम बहुत इजीली फिनिश करते हैं। योग अग्नि है, जिस अग्नि में, जैसे सोने को अग्नि में डालते हैं तो अलॉय निकल जाता है ना, ऐसे आत्मा परमात्मा की याद में जब अग्नि में अपने आप को डालती है तो अंदर का जो मैल है वो निकल जाता है और आत्मा प्योर बन जाती है। आप समझो आपके पास एक मैजिक वेबसाइट मिला जो 24 आवर्स के लिए ओपन है, आपको पता चला, और उसमें एक वो है टैब है जिसको आप क्लिक करो तो आपके अकाउंट से वो जुड़ा हुआ है, आपके अकाउंट में 10,000 रुपीस आ जाएगा, आपको पता चला तो क्या करेंगे, और आपको 50 लाख का लोन का पता चला तो क्या करेंगे, खाते खाते भी एक हाथ से क्लिक करेंगे, फोन पे बात करते करते भी क्लिक करना नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज एवरी क्लिक 10,000 रुपीस, एवरी क्लिक 10,000 रुपीस। आपका 50 लाख का भी पूरा हो जाए, उसके आगे भी जमा हो जाए, तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो क्लोज ना हो जाए। संगम युग इज दैट मैजिक वेबसाइट, 24 आवर्स ओपन। ये जो समय है संगम युग का समय, जितना हम आत्मा समझकर परमात्मा की आत्म कर्म करते हैं वो श्रेष्ठ कर्म बन जाते हैं, और हमारे जो पास्ट जो कर्म है वो खत्म हो जाते हैं और नए साइकिल के लिए हमारे नए कर्म जुड़ जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते, जमा हो जाते हैं। तो ये है कर्मों की गुह्य गति, जो हम जानते थे लेकिन थोड़ा क्लारिफिकेशन, क्योंकि ना हमको नरक में भेजा जाएगा, यही नरक है, और क्या नरक चाहिए। ऑलरेडी कलयुग नरक है, उससे ज्यादा नरक कुछ नहीं चाहिए, ना वो तेल। अब शरीर यहां वो कर दिया, लास्ट राइट्स कर दिया, शरीर को जला दिया, कौन से शरीर को वो मारेंगे, कौन से शरीर को उबलते हुए तेल में डालेंगे, लॉजिक ही नहीं बनता है। लेकिन डराने के लिए नहीं डर रहे हैं, कर्मों से नहीं डर रहे हैं, आत्मा की बैटरी लो होते होते और ही पाप कर्म करने लग रहे हैं, तो इसीलिए बड़ों ने ऐसी कहानियां बनाई और जिसने भी बनाई हमको सिखाने के लिए, डराने के लिए। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम आत्मा, हम ह्यूमन ही रहेंगे और ह्यूमन यहां फिनिश करेंगे। लास्ट में जब हम जा रहे होते हैं तो हमारे कर्मों को फिनिश करके जाना, साथ नहीं ले जाना, ऐसे हम यहां अभ्यास करें, ये हमारा लक्ष्य है। अच्छा, ओम शांति। तो हम दो मिनट हम बैठेंगे और इसी स्मृति में बैठेंगे कि कैसे परमात्मा ने हमको श्रेष्ठ कर्म सिखाया और हमको आगे बढ़ा रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए और सभी बातों से बुद्धि हटाकर अपने आप को अनुभव कीजिए कि जिसको कहते हैं मानव जन्म दुर्लभ है, वो मानव जन्म की महानता मुझे अब इस संगम युग में पता चला है। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, परमात्मा जैसी हूं। मैं आत्मा जब शुद्ध बन जाती हूं तो उनके समान बन जाती हूं। तो इस समय संगम युग में मुझे ये संपूर्ण ज्ञान और योग का मार्ग मिला है, जिससे अपने आप को मैं श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाते जाऊं। मैं आत्मा शुद्ध बनते जा रही हूं, परमात्मा की शक्ति मुझ आत्मा की मैल निकालकर मुझे अति शुद्ध, अति श्रेष्ठ बना रही है। मैं आत्मा यहां से जब जाऊंगी तो यही स्मृति, यही एहसास साथ में ले जाऊंगी कि मैं हर कर्म परमात्मा की याद में करूं, परमात्मा जैसे विचार मेरे हों, सबका कल्याण का सोचूं, सब खुश रहें, सबके जीवन में शांति और शक्ति हो, ऐसी सद्भावना रखते हुए मेरा आज का दिन अटेंशन से बिताऊंगी। ओम शांति।